जितना का आप बोझ उठा सको। कहीं ये ना करो यार वहां तो मर जाएंगे, 3 क्लास बैठना पड़ेगा, जाओ ही नहीं, ऐसा ना करना। अभी तो आज कैक है शुरू हुआ है, अभी तो आज ABC शुरू हुआ है। आओ सावधान प्यार के साथ, बड़े प्यार के साथ। बस एक प्रसंग और उसके बाद खत्म कर दें। अर्जुन कलयुग में और उसके बाद आओ, ये कृष्ण आदि नारायण है। अब लीला कहीं किसी और की है और लगा किसी और जगह पर देते हैं। यही बात रामायण के अंदर भी घटना घटती, क्योंकि हमारा हिंदू समाज आज ज्यादातर राम और श्री कृष्ण को ही भगवान मान के चलते हैं। वैसे तो हम जिस चीज की भी कोई पूजा करता है सब ठीक है, पूजा गलत नहीं, आस्था तो है ना भगवान पर, चाहे भले किसी रूप से भी है। आओ अब आपको ले चले वनवास में, जहां सीता है और राम भगवान है। थोड़ा रामायण को भी देखें, सीता हरण हो जाती, दोनों भैया वन में चले गए। थोड़ा संक्षिप्त में कर देना, ज्यादा लंबे से फिर आप ऊब ना जाए। हरण आया, रावण अपना काम करके जब चला गया तो दोनों भाई आए, देखा पंचवटी में नहीं है। ध्यान देना मेरे साथियों, वो ही नारायण भगवान जो बाद में कृष्ण बने, तो पहले क्या बने, राम बने। वो 12 कला की शक्ति से थे, वो पूर्ण 16 कला की शक्ति से, फर्क इतना ही। एकदम सीता को जब पंचवटी में नहीं देखा तो व्याकुल हो गए और पूछे अब किससे, वन के अंदर और तो कोई था नहीं, राम और लक्ष्मण वो बंदे बाहर थे। तो ये फूल पत्ते टहनियों से घबरा कर व्याकुल होकर के राम कहने लगे, ओ वन के पत्तों, ओ वृक्षों, तुम ही बता दो मेरी सीता कहाँ। अब लक्ष्मण के दिल में अर्जुन की तरह से संशय हो गया। हम और आप क्या समझते हैं कि लक्ष्मण भाई था ते माते और राम ने जोड़े गया था, ना ना ना, भाई की खातर नहीं गया था। आज भेद खुलेंगे, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण चरणों पे गिरता है, क्योंकि लक्ष्मण शेष नारायण का अवतार है और वो वैकुंठ के अवतार है। कभी जानो पहचानो रामायण को, तो आगे की क्लास का पता चले। हमने तो रामायण क्यों करानी है कि नंबर 2 का पैसा आ गया ज्यादा, कहीं रेड ना लग जाए, रामायण का प्रायण करा दो ताकि मोहल्ले में पता चल जाए कि ये कौन है, ये राम का परम भक्त है। ते माटी अपनी कालस के ऊपर राम नाम की चद्दर डालने वालों की चद्दर आज खुल रही। साथियों देखो जरा, संसार में आए हो, कुछ सोचो और कुछ विचारो। तो लक्ष्मण पगे ला करके कहता है, हे प्रभु, आप तो एक पूर्ण ब्रह्म हैं, ध्यान दो। जो लक्ष्मण ने पहचाना कि ये तो भगवान पूर्ण ब्रह्म है, और प्रभु आप एक स्त्री के माते एक पत्नी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आपने तो मुझे ज्ञान दिया था कि मनुष्य कौन है, लिखो अपने अपनी किताबों में, हकीकत में मानव मनुष्य वो है जो संकट कोट भी आ जाए तो अपना धैर्य ना छोड़े, वो ही मानव है। और हमारे ऊपर जरा सा मुसीबत आ जाएगी, रोते फिरेंगे, सूत जे, अरे थे ना क्या, जो कुछ होगा सो देखेंगे। लक्ष्मण कहता है, प्रभु आपने तो मुझे ज्ञान दिया था कि मोटा से मोटा भी संकट आ जाए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, आप तो पोते पूर्ण ब्रह्म छो। तो ध्यान दो, अब जरा खोलो रामायण, राम पोते कहे छे अर्जुन, लक्ष्मण एक तो जो तू कह रहा है ना कि सीता मेरी पत्नी है ना, ये संसार सीता को मेरे देह की पत्नी मानता है, नहीं ये मेरे मन की शक्ति है जिससे मैं सृष्टि बनाता और मिटाता हूं, इसलिए ये मेरे से जुदा और मैं इससे कभी भी जुदा हो नहीं सकता। दूसरी बात, तुमने मुझे पूर्ण ब्रह्म कहा ना प्यारे लक्ष्मण, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं। कहने लगे, प्रभु आप पूर्ण ब्रह्म नहीं है? कहने लगे, एकदम जैसे कोई आदमी बहु हैरान हो जाता है। तो लक्ष्मण हैरान थे गया कि ओहो ये क्या हुआ। तो अच्छा प्रभु, मैं तो आपको पूर्ण ब्रह्म ही मानकर घर से आया था कि आपकी कृपा से मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा। यदि आप पूर्ण ब्रह्म नहीं हैं तो मुझे पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान ही बता दो ताकि उस ज्ञान के द्वारा मैं भव से पार हो जाऊं। मेरे साथियों, तो राम भगवान वो झूठ नहीं बोलते। कहने लगे, हे लक्ष्मण, जिस पूर्ण ब्रह्म का तू ज्ञान मेरे से पूछना चाहता है, यदि वो ज्ञान मेरे पास होता तो मैं वैकुंठ से सीधा भवसागर से पार चला जाता, इधर धखड़े खाने क्यों आता। कहोगे जी ये तो रामायण में नहीं लिखा, खोलो लिखो नोट करो, बालकांड चौपाई नंबर 143। कल रामायण खोल लेना घर जाके, बालकांड खोल लेना और चौपाई ये बांच लेना और चौपाई लिख भी लो। राम भगवान कह रहे थे, नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निउपाधि अनुपा शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजेगा सो अंश ते नाना। हे प्रिय लक्ष्मण, जिस सच्चिदानंद को, जिस उत्तम पुरुष पार ब्रह्म को वेदों ने भी नेति नेति करके कहा है कि वो ना इति इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, मिथ्या में कभी भी सत्य होता नहीं है। नेति नेति जहि वेद निरूपा, और उस निजानंद पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को निउपाधि अनुपा, उसको इस दुनिया के शब्दों से कोई भी उपमा या उपाधि या महिमा लग ही नहीं सकती, क्योंकि सारे जगत के जितने भी शब्द हैं ये कहां जाके अटक जाएंगे, निराकार शून्य मंडल में रुक जाते हैं, आगे जाते नहीं, इसलिए वो निउपाधि है, उसको कोई उपाधि कोई तत्व कोई महिमा जो है लगती नहीं। इसलिए मैं कैसे बताऊं कि वो पार ब्रह्म का ज्ञान क्या है रामायण। तब लक्ष्मण प्रार्थना करते हैं, अच्छा प्रभु यदि पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तो फिर कम से कम उस पार ब्रह्म का नाम ही बता दो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिस भगवान का आप नाम सुमरण करोगे तो वो भगवान अपनी शक्ति से तुम्हें उतना फल देगा। तो पार ब्रह्म का यदि हम नाम सुमरण करेंगे तो पार ब्रह्म हम नाम सुमरण करने के बदल में भवसागर से पार कर देगा। तो इसलिए मुझे नाम बताओ, खोलो रामायण, आगे पढ़ते जाना। राम भगवान कहते हैं जहारे प्रिय लक्ष्मण, यदि मुझे उस पार ब्रह्म के नाम का पता होता तो मैं मृतलोक में क्यों आता, वैकुंठ से ही पार ब्रह्म का नाम सुमरण करता और वहां से तो नदीक राष्ट्रवरण को पार करता, भव से पार हो जाता। राम न सके नाम गुण गाई, कहां लो कहूं मैं नाम बड़ाई। हे प्रिय लक्ष्मण, मैं राम जो आदि नारायण का स्वरूप हूं, मेरे पास नाम नहीं है, नाम की महिमा ही नहीं है, तो मैं किस तरह से तुम्हें बताऊं कि पार ब्रह्म का नाम क्या है। तब लक्ष्मण कहते हैं प्रभु तो क्या, ध्यान दो आप जरा, कि क्या आपकी शरण में आने के बाद भी हम जन्मते और मरते रहेंगे तो फिर आपकी शरण में आने से लाभ क्या हुआ। ध्यान दो मेरे साथियों, राम भगवान कह रहे हैं तो सुन ले प्रिय लक्ष्मण, इतना बता देता हूं कि वो कब मिल जाएगा, मेरे पास नहीं, अभी त्रेता युग है। राम कब आए भाई, बोलो बोलो, राम कब आए, त्रेता युग में, और कृष्ण कब आए, बोलो बोलो जरा खुल के बोलो, क्योंकि कृष्ण प्रणामियों को बिचारों को कष्ट हो रहा होगा, उन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ रखा है कलयुग में उस कृष्ण को, जिसने आना नहीं ना वो आया। कृष्ण कब आए, अरे बोल तो दो, हाँ द्वापर युग में, और राम कब आए, कलयुग में। वह राम कह रहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। प्रिय लक्ष्मण चिंता मत कर, बस एक ही युग द्वापर बीच में है, कल युग में पूर्ण ब्रह्म सच्चदा नंद अक्षरा तीत आएंगे, खुद वो अपना नाम अपना धाम और अपना स्वरूप दुनिया में आकर के जाहिर करेंगे। उस नाम को उस पूर्ण ब्रह्म के साथ उस नाम से जो अपना संबंध जोड़ेगा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, वही भाव से पार होगा। तो प्रभु फिर आप जब इस सृष्टि के नाथ हैं तो मुझे वरदान दो कि कल युग में मुझे मनुष्यत्व मिल जाए, तथास्तु, ये मैं दे सकता हूं आपको निश्चय करके जो है कल युग में नाम पार ब्रह्म का मिलेगा और मनुष्यत्व आपको मिलेगा। आइए अभी समय है, चार नहीं बजाऊंगा, चिंता मत करो, समय चार तक है, साढ़े तीन बंद कर दूंगा, 15 मिनट बाकी, बस फिर प्रसाद मिलेगा, चलेंगे, बाकी कल सोचेंगे। आओ, कलयुग शुरू हुआ भाई, त्रेता गया द्वापर गया, कलयुग को ले तो आए, आने वाले की महिमा कल पूछ लेंगे। कलयुग जब शुरू होता है तो पहला राजा जिसने पृथ्वी पर राज किया उसका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय को व्यास जी कथा बता रहे हैं, बताना तो चाहते थे कि तेरे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, पर उस पर एकदम ही संकट ना आ जाए, पहले उसके पूर्वज जनों की बात बता रहे हैं कि क्योंकि मेरे साथियों क्या होता है कि जैसे जैसे युग बदलता है तो बुद्धि पर भी युग का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अभी द्वापर युग खत्म होने वाला हो रहा है और कलयुग शुरू हो रहा है। पांडवों के वंश का पहला राजा जो था जन्मेजय था, व्यास जी उसको बता रहे हैं कि राजा जन्मेजय क्या तू अपने दादा और पिता की शक्ति को जानता है? भला भला किसी बेटे को ये कहा जाए तो कौन नहीं मानेगा। कह लगे बाबा तुझे नहीं पता कि तेरे दादा कितने शक्तिशाली थे? तो राजा जन्मेजय कहते हैं व्यासी महाराज आज किधर आपका विचार हो गया, मारा ही तो दादा था। कहने लगे थारा दादो तो था पर तुम्हें उलखान नहीं। कहने लगे क्यों? कि तारा दादा जो भीम था ना भीम, हाँ तो क्या था इन्हें कि उसके पास इतनी मोटी गदा थी। गदा पास तो रखता था पर युद्ध में कभी वापरता नहीं था। हैरान हो गए भीम के महाराज अगर वो गदा वापरते नहीं थे तो युद्ध जीत कैसे जाते थे? कहने लगे कि बड़े बड़े राजा महाराजा जब हाथी पे चढ़ के आते थे युद्ध करने तो भीम हाथी को दुम से पकड़ता था करके फेंक देता था। तो भीम ने जो हाथी फेंके वो आज दिन तक लौट के धरती पर आए नहीं, इतने शक्तिशाली तेरे दादा थे। तो जन्मेजय कहता ओ महाराज इतना गपौड़ मारो हैं कि जो मैं सुन भी सकूं, दादा तो मेरे थे ना और मैं तो हाथी का पग सारा दिन लगा रहूं तो हिलेगा नहीं और मेरे पिताश्री मेरे से 10 गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते होंगे। तो वो हाथी को ज्यादा से ज्यादा पकड़ के रस्सा बांध के खींच लेते होंगे, हाथी बैठ जाता। और जो दादा थे भीम भीषम ये सारे जितने भी थे तो ये क्या करते होंगे कि धक्का देते होंगे तो हाथी गिर जाता होगा, पर ये मैं नहीं मानता कि हाथी और दुम से पकड़े और यूं करे और लौट के धरती पर ना महाराज ए महाराज तो बात तुम्हारा ज्ञान सुनना ही नहीं, कभी झूठ बोलते हो। आज के नौजवान कभी मान सकते? क्योंकि उनको पता है कि हम एक उंगली के ऊपर 5 किलो का भी वजन, बोलो नहीं तो कल प्रैक्टिकल करा दूंगा, 5 किलो का वेट ले आऊंगा, कोई नौजवान उंगली पे उठा के बता दे। और भीम बैठे बैठे हाथी की दुम पकड़ रहा था, लौट करके आकाश से। किस बुद्धि के साथ सोचोगे, कितनी बीड़ियां रोज पीता होगा? क्योंकि अंडे खाने से आज के डॉक्टर क्या कहते हैं, विटामिन बी आएगा भी, तो हमारी बहनें भी अपने बच्चों की तंदुरुस्ती स्वास्थ्य ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अंडे दूध में पिला रही ताकि हमारे बच्चे शक्तिशाली हो जाएं। उन बहनों से प्रश्न है हाथी ओ भीम कितने अंडे रोज खाता था जो हाथी फेंक, वो सात्विक भोजन करते। सात्विक भोजन के अंदर जो शक्ति शुद्धि थी सब कुछ है वो किसी भोजन के अंदर नहीं, वो राक्षसी भोजन। ध्यान दो मेरे साथियों, तब योग के बल से जो योग साधना हमारे शास्त्रों में अष्टांग योग कही है, व्यास जी उसके अंदर निपुण थे, उन्होंने अपने योग के बल से वायुमंडल को रोका। जो वायु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलती है, आज तो प्रैक्टिकल हो गया क्योंकि हम रॉकेट छोड़ते हैं और रॉकेटों से पता चल गया कि जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आगे वो शक्ति खत्म हो जाती है कि धरती अपनी तरफ खींचे। अर्थात जो चीज 2 किलोमीटर ऊपर चली जाए उसको खींचने की शक्ति धरती में नहीं रहती, ये राकट ने बता दिया। आगे ये चीजें नहीं थी, इसलिए राजा जन्मेजय को विश्वास नहीं हुआ। तो क्या किया उन्होंने, व्यास जी ने उस वायुमंडल को रोका तो डायरेक्ट धरती का उसके साथ जब संबंध जुड़ा तो उस वायुमंडल में जो ऊपर थी दर 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 जो हाथी के खड़ियान थे, सिर था, टांगे थी, सूंड था, कान थे, दर 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 नीचे गिरने लगे। उसी के सामने जब 1 मिनट के अंदर इतने हाथियों के खड़ियान आ गए तो व्यास जी कहते हैं बोल भाई और के बंद करूं। कहते महाराज कितने थे? चले जा आकाश भरा पड़ा, को भीम ने गिन के थोड़ा हाथी गिन रखे थे। युद्ध में जो हाथी आया भेजता गया, लौट के एक भी नहीं आया, चरणों पे गिर गया। प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना, इसलिए तो वीरू भाई जी को प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। क्योंकि आज संतों की वाणी पर क्या लोग मजाक समझते हैं। अरे भाई जो संत है उनको डंबरों की जरूरत नहीं होती, इसका सत्य वचन ही सबको चुका देता। आइए तब चरणों पे गिर के ज्यादा जन्मेजय कहता है महाराज आज इस ज्ञान के सुनाने का आपका अर्थ क्या था? कहने लगे इसलिए तुम्हें बता दिया है, ये तो तेरी बीती बात है, अब तेरे साथ जो होने वाली है वो बात बताता हूं कि थोड़े ही दिनों के बाद तू चक्रवर्ती राजा होगा। चक्रवर्ती राजा होने के बाद नियम विधान था उस समय का कि उस राजा को 10,000 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ता था। पर तू क्या करेगा, वन में शिकार करने के लिए जाएगा? स्वर्ग की एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ इंद्र ने जो वन में घूम रही होगी, संध्या काल होते ही वो जब अप्सरा के रूप में आएगी तो उसका सुंदर स्वरूप देखकर तू मोहित हो जाएगा और उसको पकड़ के घर ले आएगा और उसको पटरानी बनाएगा। जब तू पटरानी बनाएगा तो 10,000 ब्राह्मणों का भोजन कराएगा। तो ये आज भी विधान है कि गुरुजनों को संत जनों को जब भी भोजन कराया जाए यदि कोई बहन या भाई परोसने लगे तो उस समय वस्त्र बदलना नहीं चाहिए। ये हिंदू इतिहास के भोजनों का वर्णन है। पर क्योंकि वो स्वर्ग की अप्सरा होगी उसके तो वस्त्र ऑटोमेटिक बदलेंगे तो ब्राह्मण लोग समझेंगे कि हमारा भोजन दूषित हो गया। वो परीक्षा लेने के लिए जो तू उनको भोजन खीर परोसेगा, खीर का छींटा दे देंगे। अब रानी से तो नहीं पूछ सकते कि रानी तू वस्त्र बदल के आई है कि नहीं, तो उसके वस्त्र तो बदल जाएंगे पर राज्यों का क्यों बैंगी बस सिर्फ 5 मिनट थोड़ा कोई बात नहीं क्षमा करना। हाँ तो जब वो वस्त्र बदल जाएंगे पर छींटा दूध का रहेगा तो ब्राह्मण तुझे श्राप देंगे के ओ राजा जन्मेजय तूने हमारा भोजन दूषित किया है, जा 8 अंगों से कोड़ी हो जा। और तू कोड़ी होगा, कोई भी टाल सकता नहीं, ये तेरा भविष्य कहता है। अब राजा तो अपना राज भी भूल गया और चक्रवर्ती भी भूल गया। जिसको ये पता चल गया कि मैं कोड़ी होने वाला हूं, बोलो पानी भी अच्छा सुहाएगा क्या? वो तो मर गया जिंदा। जिसको ये कह दिया जाता है ना तुझे 2 महीने के बाद फांसी लगेगी, लगेगी नहीं, उस दिन से समझो वो मर गया। समय पूरा करना होता है। राजा जन्मेजय चरणों में गिर के प्रार्थना करता है, प्रभु हे मेरे भगवान रूप व्यासी महाराज, कुछ कृपा करो, मुझे इस रोग से निकालो। क्यों? कुछ मेरे साथियों, संसार में आज भी ऐसे व्याध रोग हैं, यदि ये जन्म हमारा छूट भी जाएगा तो अगले जन्म में कोड़ी ही बनेगी। ऐसे रोग हैं, आज डॉक्टरों ने भी इस चीज को स्वीकार किया है, ध्यान दीजिए। इसलिए राजा जब व्याकुल होता है तो अब व्यास कहते हैं, चिंता ना कर। अरे राजा तू चिंता ना कर, तेरे को वो फल मिलने वाला है जो कभी सृष्टि भर हुआ ही नहीं और ना कभी होगा। शिव पुराण नोट करो भाई जो देखना चाहे, उसमें जाके अध्याय 4 श्लोक नंबर 74 पढ़ ले। व्यास जी कहते हैं, राजा अभावी नो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपना, अभावी नो, बस यही श्लोक कह के अर्थ कह के कलयुग आ गया ना, बाकी कल से कथा शुरू करेंगे। अभावी नो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलौ युगे प्रधान पुरुष आश्रय। के हे राजा चिंता ना कर, इस संसार के अंदर कलयुग के अंदर एक ऐसी अन होने वाली अभावी, भावी किसको कहते हैं, जो होने वाली होती, जैसे मरना जन्मना एक्सीडेंट हो जाना बुखार हो जाना, ये तो सबके साथ हो रही है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये मत सोचो कि हमारे घर मर रहे हैं तो उनके घर नहीं मर रहे, कोई ऐसा संसार में नहीं है। एक बार गुरु नानक देव जी का नाम तो सुना ही होगा, दो शिष्यों के साथ जा रहे थे तो एक गांव के अंदर से गुजरे, वहां एक बिचारी बुढ़िया डिक्री हती, बालपन से उसका पति ऑफ हो गया था, एक ही उसका लड़का था, बर्तन मल मल के चक्की पीस पीस के उसने जो है उसको पाला था, पढ़ाया था, लगन होने वाला था कि भानी तो बहुत वो चीज है, उसकी मृत्यु हो गई। कोई सहारा नहीं था दुनिया में, बस लड़के का ही रास्ता देख रही थी, लड़का भी जब मर गया बस रो रो के बुरी हालत। वो कहती है मैं अपने लड़के की लाश मृतक बॉडी नहीं उठाने दूंगी, मैं इसी के साथ मर जाऊंगी। उसी रात गुरु नानक वहां आ गए, सब लोगों ने महिमा सुन रखी थी, सब गांव वालों ने कहा महाराज आप इतने महान संत हैं तो क्या एक आदमी को, बस दो मिनट की बात है बस बंद करता हूं, आप इसको जिंदा नहीं कर सकते। अब औरत वीर ने जब सुना, बढ़िया ने, बुढ़िया जो थी डिक्री आ गई रोती रोती, तो ध्यान दो, कहते बुढ़िया क्यों रो रही है, मेरा बच्चा जिंदा होना चाहिए। कहने के अच्छा कल जिंदा हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ध्यान दो मेरे साथियों, सुनने जैसी बात है, मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा, बिल्कुल लड़का जिंदा हो जाएगा, पर एक शर्त है, रात भर तूने रोना नहीं, रात भर रोना नहीं और इसकी डेड बॉडी अर्थी के पास बैठी रहो, रोना नहीं तब तो हो जाएगा जिंदा, अगर तू इसके देख के रोएगी तो फिर हम नहीं जिंदा कर पाएंगे, रात भर तेरी यही परीक्षा है, सुबह मेरे पास आ जाना बिल्कुल जिंदा कर दूंगा, अगर ना जिंदा हो तो मैं मर जाऊंगा यहीं पर और बोल। बुढ़िया को विश्वास आ गया कि इतने महान संत जब इतना वचन दे रहे हैं, सब गांव के सामने बोल रहे हैं तो ठीक है। सारी रात लड़के के मृतक शरीर डेड बॉडी के पास बैठी रही, रोई नहीं, सुबह आई नहा धो के। हाँ उधर गुरु जी भी तैयार थे, गुरु नानक देव जी आओ बढ़िया आओ, आओ, आओ अभी तेरा लड़का जिंदा हो जाता, बस एक मुट्ठी भर आटा चाहिए, ऐसा कर गांव में चली जा, एक मुट्ठी भर फक्त आटा ले आ, पर उस घर से लाना है जिस घर में कभी कोई मरा, उस घर का आटा चाहिए। तुरंत बस देरी तेरी है, लड़का अभी जिंदा हो जाता है। अब वो बिचारी को क्या पता, अब उसने सारा गांव 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 घर घर सब जगह गई, आटा तो सब थाल लेकर के खड़े के ले बुढ़िया, अगर तेरा बेटा जिंदा होता तो एक मुट्ठी का भैया थाल ले जा। कहते जी तुम्हारे घर कोई मरा था? हाँ भाई छह महीने था, मारा तो डिकरा मरा था, कोई कहता हमारा बाबा मरा था, कोई कहता मेरा नाना मरा था, कोई कहता मेरा पति मरा था, कोई कहता मेरी माँ मरी थी, कोई कहता मेरी बहन मरी थी, कोई कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसके घर में कोई वही मरा नहीं। तो अब वो वापस आई, गुरुजी के पास नहीं गई, गांव वालों को कहती उठाओ इसको जल्दी चल के जो है शमशान घाट में दफन कर दो। जब सबके घर में मरना है तो मेरा मर गया तो क्या हुआ, इसको कहते हैं खूनी, जो सबके साथ होती है। अब उन्होंने क्या कहा था, अभावी अनहोनी बात, मेरे साथियों जो कभी भी नहीं हुई और ना दोबारा फिर कभी होगी वो कलयुग में हो अनहोनी होगी कि पूर्ण ब्रह्म और उनकी आत्माएं वो ब्रह्म मुनि संसार में आकर के मानव तन को धारण करेंगे।